मिहिर भोज प्रथम राम भद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। वह उसकी पत्नी अप्पा देवी से उत्पन्न हुआ था। लेखों से उसके दो अन्य नाम प्रभास तथा आदिवराह भी मिलते हैं। उसके शासनकाल की घटनाओं की सूचना अनेक लेखों से प्राप्त होती है, जिनमें से कुछ स्वयं उसी के तथा कुछ उसके उत्तराधिकारियों के हैं। उसका सर्वप्रमुख लेख ग्वालियर से मिलता है, जो प्रशस्ति के रूप में है। लेखों के अतिरिक्त कलहन तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरण से भी हम उसके काल की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। राजा बनने के उपरांत मिहिर भोज का पहला महत्वपूर्ण कार्य साम्राज्य का दृढ़ीकरण तथा था। सर्वप्रथम उसने अपने पिता के निर्बल शासन काल में स्वतंत्र हुए प्रांतों को पुनः अपनी अधीनता में किया। उसने मध्य भारत तथा राजपुताना में पुनः राजाओं ने उसके अभियानों में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। उसने कलचुरी वंश तथा गृहलोद वंशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। इन वंशों के राजाओं ने उसके अभियानों में सहायता दी। ग्वालियर लेख में कहा गया है कि अगस्त ऋषि ने तो केवल विंध्य पर्वत का विस्तार अवरुद्ध किया था, किंतु इसने भोज ने कई राजाओं पर आक्रमण कर उसका विस्तार कर दिया। उत्तर भारत में किए गए उसके अभियानों में गुहली वंश हर्षराज, जो उसके एक सामंत था, ने भोज की सहायता की। भारत में किए गए उसके अभियानों में गुहली वंश हर्षराज, जो उसके एक सामंत था, ने भोज की सहायता की थी। चर्ट्स लेखक के अनुसार उसने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर भोज को घोड़े उपहार में दिए थे। यह भी वर्णित है कि उसने गौड़ नरेश को पराजित किया था तथा पूर्वी भारत के शासकों से कर प्राप्त किया था। कलचुरी वंशी गुणा मोम बोधि देव भी उसका सामंत था। पहेवा पूर्वी पंजाब लेख से सूचित किया जाता है कि हरियाणा प्रदेश उसके राज्य में शामिल था। भोज का एक खंडित लेख दिल्ली में पुराना किला से मिलता है, जो वहां उसके मत अधिकार का सूचक है। बी एन पुरी को का मत है कि उन लेख में उल्लिखित बलवर्मा मिहिर भोज का काठियावाड़ में सामंत था, जिसने अपने स्वामी की ओर से लड़ते हुए हुणों को हराया था। देवगढ़ झांसी तथा ग्वालियर के लेखों से भोज का मध्य भारत पर अधिकार पुष्ट होता है। इस प्रकार अपने राज्यारोहण के पश्चात मिहिर भोज ने अपनी राजनीतिक स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में काफी सुदृढ़ बना किया था। मिहिर भोज के समय में भी प्रतिहारों की पालों तथा राष्ट्रकूटों के साथ पुरानी प्रतिद्वंद्वता चलती रही। मिहिर भोज दो पाल राजाओं देवपाल तथा विग्रहपाल का समकालीन था। एक ओर जहां पाल लेख प्रतिहारों पर विजय का विवरण देते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतिहार लेख पालों पर विजय का दावा प्रस्तुत करते हैं। पदकालीन बादल लेख से में कहा गया है कि देवपाल ने गुर्जर नरेशों को पराजित किया। इसके विपरीत ग्वालियर लेख में वर्णित किया गया है कि जिस लक्ष्मी ने धर्मपाल के पुत्र का विवरण किया था, उसी ने बाद में भोज की दूसरे पति के रूप में चुना। अतः वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि प्रारंभिक युद्ध में तो देवपाल को मिहिर भोज के विरुद्ध सफलता प्राप्त की हुई, लेकिन उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी नारायणपाल के समय में अथवा देवपाल के शासन के अंतिम दिनों में ही मिहिर भोज ने अपने पराजय का बदला ले लिया। पाल साम्राज्य के पश्चिमी भागों पर उसका अधिकार हो गया। मिहिर भोज के दूसरे शत्रु राष्ट्रकूट थे। पालों से निपटने के पश्चात वह राष्ट्रकूटों की ओर मुड़ा। मिहिर भोज दो राष्ट्रकूट राजाओं अमोघवर्ष तथा कृष्ण द्वितीय का समकालीन था। अमोघवर्ष शांत प्रकृति का शासक था। उसके समय में मिहिर भोज ने उज्जैन पर अधिकार करते हुए नर्मदा नदी तक धावा बोला। बग्रुमा लेख से विदित होता है कि ध्रुव ने उसकी सेना को पराजित कर भगा दिया था। वह ध्रुव राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा का ध्रुव द्वितीय था, जो अमोघवर्ष का सामंत था। लेख से मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि भोज को राष्ट्रकूट क्षेत्रों में कोई सफलता नहीं मिली तथा उसे क्षणिक पराभव का मुख देखना पड़ा। अमोघवर्ष के पुत्र कृष्ण द्वितीय के समय में भी दोनों राजवंशों का पंजाब का संघर्ष चलता है। इस समय राष्ट्रकूट नरेश द्वितीय 878 से 914 ईस्वी चालुक्यों के साथ युद्ध में फंसा हुआ था। भोज ने उस पर आक्रमण कर नर्मदा नदी के तट पर उसे परास्त किया। इस विजय के फलस्वरूप मालवा पर उसका अधिकार स्थापित हो गया। इसके बाद वह गुजरात की ओर बढ़ा तथा खेटक खेड़ा जिला के आसपास के भूभाग को जीत कर लिया। गुजरात शाखा के राजकूटों का 888 ईस्वी के बाद कोई उल्लेख नहीं मिलता, जो इस बात का सूचक है कि यह प्रदेश प्रतिहारों ने जीत लिया था। राष्ट्रकूट अभिलेख देवली तथा कराहट से पता चलता है कि भोज तथा कृष्ण के बीच उज्जैनी में एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें कृष्ण ने भोज को भयाक्रांत कर दिया, किंतु ऐसा लगता है कि इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला तथा मालवा पर भोज का अधिकार बना रहा। इसके बाद भी दोनों देश वंशों में उज्जैन पर अधिकार को लेकर युद्ध होते रहे, लेकिन खेटक के आसपास का भाग पुनः राष्ट्रकूटों के हाथों में चला गया। 910 ईस्वी में हम उत्तरी गुजरात में ब्रह्मवलोक वंश के प्रचंड नामक एक नए सामंत को शासन करते हुए पाते हैं। इंद्र द्वितीय 914 से 928 ईस्वी के समय में गुजरात का शासन सीधे मान्यखेत से होने लगा। 915 ईस्वी में इंद्र ने वहां एक ब्राह्मण को दिए गए दान की पुष्टि की, जो वहां उसके अधिकार का सूचक है। इस प्रकार भोज ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उत्तर पश्चिम में उसका साम्राज्य पंजाब तक विस्तृत था। पूर्व में गोरखपुर के कलचूरी उसके सामान थे तथा संपूर्ण अवध का क्षेत्र उसके अधीन था। कहल लेख गोरखपुर जिला से पता चलता है कि कलचूरी शासक गुणनाम बोधि ने भोज से कुछ भूमि पाई थी। जयपुर क्षेत्र का गुहिलोत शासक हर्षराज भी उसका सामंत था। दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़ से भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल का लेख मिलता है, जो उस भाग पर उसके अधिकार की पुष्टि करता है। बुंदेलखंड के चंदेल शासक उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। दक्षिण में उसका साम्राज्य नर्मदा नदी तक विस्तृत था। उसने कन्नौज को इस विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाई तथा लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवारा एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। निश्चयतः वह गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ। भोज के शासनकाल का अरब यात्री सुलेमान बड़े उच्च शब्दों में वर्णन करता है। उसके अनुसार इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अन्य किसी राजा के पास उसके जैसी अश्व सेना नहीं है। वह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है, यद्यपि वह अरबों के राजा को सबसे बड़ा राजा मानता है। भारत के राजाओं में उससे बड़ा इस्लाम का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। वह अपार धन एवं ऐश्वर्य युक्त है। भारत में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। भोज के लेखों तथा मुद्राओं पर अंकित आदिवराह उपाधि यह सूचित करती है कि देश को मलेच्छों अरबों से मुक्त कराना वह अपनी पुनीत कर्तव्य समझता है। अरब उससे बहुत अधिक डरते थे। 916 ईस्वी में संधि की यात्रा करने वाले मुस्लिम सिंध की यात्रा करने वाले मुस्लिम यात्री अलम सुदी यहाँ तक लिखता है कि अपनी शक्ति के केंद्र मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा रखा था। जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता था तो वे उस मंदिर की मूर्ति को नष्ट कर देने का भय पैदा कर अपनी रक्षा कर लेते थे। विलादुरी कहता है कि अरबों को अपनी रक्षा के लिए कोई सुरक्षित स्थान का मिलना ही कठिन था। उन्होंने एक झील के किनारे अलहिंद सीमा पर अलमहफूज नामक एक शहर बसाया था, जिसका अर्थ सुरक्षित होता है। इन विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि भोज ने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोक दिया था। अपने इस वीर कृत्य द्वारा उसने भारत भूमि की महान सेवा की थी। महेंद्रपाल प्रथम। मीर भोज प्रथम के बाद उसकी पत्नी चंद्र भट्टारिका देवी से उत्पन्न पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी शासक बना। उसने न केवल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त साम्राज्य को अक्षुण्य बनाए रखा, अपितु पूर्व में इसका विस्तार भी किया। महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल से संबंधित घटनाओं की सूचना देने वाले लेख भोज से अधिक है। उसके कई सामंतों के लेखों में भी उसका उल्लेख मिलता है। लेखों में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। दक्षिणी बिहार तथा बंगाल के कई स्थानों से उसके लेख मिलते हैं। इनमें बिहार शरीफ पटना से उसके शासनकाल के चौथे वर्ष के दो लेख, राम गया तथा गुनरिया गया से प्राप्त आठवें तथा नौवें वर्ष के लेख, इट खौरी हजारीबाग का लेख तथा पहाड़पुर राजशाही बंगाल से प्राप्त पांचवें वर्ष का लेख आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय है कि महेंद्रपाल के पिता भोज का कोई लेख इन क्षेत्रों से नहीं मिलता, अतः यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि इन स्थानों की विजय महेंद्रपाल ने ही की थी। उसका पाल समकालीन नारायणपाल एक निर्बल राजा था। मगध क्षेत्र से उसके शासनकाल के 17वें वर्ष तक का लेख मिलता है, किंतु इसके बाद फिर 94वें वर्ष का लेख मिलता है। इसे सूचित होता है कि इस अवधि 17 से 54 वर्ष में मगध क्षेत्र पर प्रतिहारों का अधिकार हो गया था। महेंद्रपाल ने और आगे विजय करते हुए बंगाल तक का प्रदेश भी जीत लिया होगा, जैसा कि उसके पहाड़पुर लेख से प्रमाणित होता है। काठियावाड़ा, पूर्वी पंजाब, झांसी तथा अवध से भी उसके लेख मिलते हैं, जो उसके साम्राज्य विस्तार को सूचना देते हैं। मालवा का परमार शासक वाकपति भी संभवतः उसका अधीनता स्वीकार करता है। काठियावाड़ा के चालुक्य शासक भी उसके सामान थे, जैसा कि उणा लेख से ध्वनित होता है। यहाँ से दो लेख मिलते हैं, जिनमें चालुक्य वलवर्मा तथा उसके पुत्र अवंती वर्मा का उल्लेख सामंत के रूप में मिलता है। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद चतुर्थ के एक लेख में कहा गया है कि कृष्ण द्वितीय ने किसी बड़े शत्रु को पराजित कर खेटक मंडल गुजरात पर अपनी ओर से किसी व्यक्ति को राजा बनाया था। इसे ध्वनित होता है कि उसके पूर्व कुछ समय के लिए महेंद्रपाल ने गुजरात अंतर्गत खेटक क्षेत्र को भी जीत लिया था, किंतु बाद में राष्ट्रकूटों का वहाँ अधिकार हो गया। इस प्रकार महेंद्रपाल ने एक अत्यंत विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। उसने जीवन पर्यंत अपने शत्रुओं को दबा कर रखा। महेंद्रपाल न केवल एक विजेता एवं साम्राज्य निर्माता था, अपितु कुशल प्रशासक एवं विद्या और साहित्य का महान संरक्षक भी था। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु थे। चंद्रशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विशुद्ध शाल भज्जिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। उनकी रचनाओं से कन्नौज नगर के वैभव एवं समृद्धि का पता चलता है। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महेंद्रपाल के शासनकाल में राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। कन्नौज ने एक बार पुनः वही गौरव एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया जो हर्षवर्धन के काल में उसे प्राप्त था। यह नगर हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र बन गया तथा शक्ति और सौंदर्य में इसकी बराबरी करने वाला दूसरा नगर न रहा। महिपाल। महेंद्रपाल के पश्चात प्रतिहार वंश के उत्तराधिकारी प्रश्न कुछ विवादास्पद हैं, ग्रस्त हैं। उसकी दो पत्नियां थीं, जिसने दो पुत्र भोज द्वितीय तथा महिपाल थे। महेंद्रपाल के बाद संभवतः कुछ समय के लिए भोज द्वितीय ने शासन किया। उसे अपने सामंत चेदी नरेश कोक्कल देव प्रथम से काफ़ी सहायता मिली थी तथा संभवतः उसी की सहायता से भोज ने सिंहासन पर अधिकार जमा लिया था। इसका संकेत कोक्कल देव के बिल्हारी लेख में हुआ है, जहां बताया गया है कि समस्त पृथ्वी को जीतकर उसने दो कीर्ति स्तंभ स्थापित किए, दक्षिण में कृष्णराज तथा उत्तर में भोजदेव। बनारस दानपत्र में कहा गया है कि कोक्कल ने भोज को अभयदान दिया था, किंतु भोज मात्र दो वर्षों तक ही शासन कर पाया तथा शीघ्र ही उसका सौतेला भाई महिपाल शासक बना। उसे चंदेल वंश के राजा हर्षदेव से काफ़ी सहायता मिली। संभवतः उसने भोज को पराजित किया तथा सिंहासन पर अधिकार कर लिया। खजुराहो लेख से पता चलता है कि हर्षदेव ने क्षितिपाल को सिंहासन पर पुनर्स्थापित किया था। यहाँ क्षितिपाल से तात्पर्य महिपाल से ही है। उसने 912 ईस्वी से 944 ईस्वी तक शासन किया। उसका शासनकाल शांति एवं समृद्धि का काल रहा। उसने अपने साम्राज्य को अच्छिन्न बनाए रखा तथा उसका कुछ विस्तार भी किया। गुजरात जैसे दूरवर्ती प्रदेश पर भी उसका अधिकार बना रहा वहाँ तथा वहाँ उसका सामंत धरवणी वरा शासन करता था। परंतु पूर्व की भांति इस समय भी राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को शांतिपूर्वक शासन नहीं करने दिया। इस समय राष्ट्रकूट वंश में इंद्र तृतीय शासन कर रहा था। उसने एक सेना के साथ महिपाल पर आक्रमण किया। खंभात दानपत्र के अनुसार उसने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया तथा उसकी सेना ने यमुना नदी को पार कर कुश स्थल नाम से प्रसिद्ध महोदय नगर कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इंद्र के अभियान में उसके चालुक्य सामंत नरसिंह ने भी सहायता दी। इसका उल्लेख कन्नड़ कवि पंप 941 ईस्वी ने अपने ग्रंथ पंप भारत में किया है, जो नरसिंह का आश्रित कवि था। इस युद्ध में महिपाल पराजित हुआ तथा जान बचाकर भागा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्थिति का लाभ उठाते हुए पालों ने भी बिहार के उन क्षेत्रों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया, जिन्हें पहले महेंद्रपाल ने विजित किया था। पाल नरेश राजपाल तथा गोपाल द्वितीय के लेख क्रमशः नालंदा तथा गया से मिलते हैं। ये दोनों ही महिपाल के समकालीन थे। लेखों की प्राप्ति स्थानों से सूचित होता है कि बिहार का बड़ा भाग पाल अधिकार में चला गया तथा कुछ समय के लिए प्रतिहारों की स्थिति अत्यंत निर्बल पड़ गई। यह सब राजकूटों के आक्रमण का भी परिणाम था, परंतु इंद्र तृतीय कन्नौज में अधिक समय तक ठहर सका तथा उसे ही दक्षिण लौटना पड़ा। राजकूटों के प्रत्यार्पण के पश्चात महिपाल ने पुनः अपनी स्थिति सुदृढ़ करना प्रारंभ कर दिया। चंदेल तथा गुहिलोत वंश के अपने समस्त सामंत शासकों की सहायता प्राप्त कर उसने कन्नौज, गंगा यमुना के दुआब, बनारस, ग्वालियर तथा पश्चिम में काठियावाड़ा तक के प्रदेशों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। राजशेखर उसे आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहता है। उसकी विजयों का विवरण देते हुए यह वह लिखता है कि महिपाल ने मुरलों के सिरों के बालों को झुकाया, मेकलों को अग्नि के समान जला दिया, कलिंग राज को युद्ध से भगा दिया, केरल राज्य की केली का अंत किया, कुलूतों को जीता, कुंतलों के लिए परशु का काम किया तथा रमठों की लक्ष्मी को बलपूर्वक अधिग्रहित कर लिया। इनमें मुरल संभवतः नर्मदा घाटी की कोई जाति थी। राजशेखर ने इसे कावेरी तथा बनवासी के मध्य स्थित बताया। मेखल राज्य नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में स्थित प्रदेश था। कलिंग उड़ीसा में तथा केरल तमिल में देश स्थित था। कुलूत तथा रमठ की स्थिति पंजाब में मानी गई है। संभव है राजशेखर का यह विवरण काव्यात्मक हो, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उपरोक्त प्रदेशों में से अधिकतर पर पहले से ही प्रत्याहारों का अधिकार था। संभव है कि महिपाल की संकटग्रस्त स्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ राज्यों ने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी थी हो तथा शक्तिशाली होते ही महिपाल ने पुनः इन पर अपना अधिकार कर लिया हो। इस समय राष्ट्रकूट भी निर्बल स्थिति में थे। उनका शासक गोविंद चतुर्थ अयोग्य एवं विलासी था। यदि इसकी स्थिति का लाभ उठाते हुए महिपाल ने कुछ दक्षिणी प्रदेशों पर धावा बोला हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्षेमेश्वर के नाटक चंड कौशिकम में महिपाल को कर्नाटक का विजेता बताया गया है। तदनुसार चंद्रगुप्त ने चाणक्य की नीति का पालन करते हुए नंदों को पराजित कर पाटलिपुत्र को जीता था। वहीं पुनः कर्नाटक रूप से पुनर्जात नंदों का वध करने के लिए महिपाल रूप में अवतारित हुआ। अधिकांश विद्वान इस महिपाल की पहचान प्रतिहार वंशी महिपाल से ही करते हैं। कर्नाटक से तात्पर्य राष्ट्रकूट प्रदेश से है। ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र तृतीय के हाथों अपनी पराजय का बदला लेने के लिए महिपाल ने उसके उत्तराधिकारी के समय में राष्ट्रकूटों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसका समर्थन चाटसु लेखक से प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि महिपाल के सामंत भट्ट ने अपने स्वामी की आज्ञा से किसी दक्षिणी शत्रु को जीता था। मजुमदार के अनुसार यहाँ तात्पर्य राष्ट्रकूटों से ही है। मुसलमान लेखक अलम सूदी, जो 915 से 916 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था, महिपाल की अपार शक्ति एवं साधनों की प्रशंसा करता है। उसके अनुसार महिपाल के सैनिकों की कुल संख्या 7 से 9 लाख के बीच थी, जिसे उसने साम्राज्य के चारों दिशाओं में फैला रखी थी, क्योंकि वह सभी ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसके शत्रुओं राष्ट्रकूट तथा अरब प्रमुख थे। इन विवरणों से यह संकेत मिलता है कि महिपाल ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर ली। ऐसा प्रतीत होता है कि महिपाल की सफलताओं के बावजूद राष्ट्रकूटों के आक्रमण से प्रतिहारों को जो आघात पहुंचा, उसे वे संभल नहीं हो सके। महिपाल के समय में ही प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। चंदेल परमार तथा चेदी लोगों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ऐसे संकेत मिलते हैं कि उसके शासन के अंत में कालंजर तथा चित्रकूट के दुर्गों पर से महिपाल का अधिकार जाता रहा। संभव है इसी चिंता से उसकी मृत्यु 945 ईस्वी में हो गई। निसंदेह उसकी गणना प्रतिहार वंश के महानतम शासकों में की जा सकती है। महेंद्रपाल द्वितीय तथा प्रतिहार साम्राज्य का पतन। महिपाल के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय राजा बना, जिसने 945 से 948 ईस्वी तक शासन किया। आरडी बनर्जी का विचार है कि राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय के आक्रमण के फलस्वरूप प्रतिहार साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, किंतु महेंद्रपाल का एक लेख दक्षिणी राजपुताने के प्रतापगढ़ नामक स्थान से मिलता है, जिसमें दशपुर में स्थित एक ग्राम को दान में दिए जाने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि महेंद्रपाल के समय तक प्रतिहारों का मालवा क्षेत्र पर अधिकार पूर्वक बना रहा। वहां उसका सामंत चाहमान वंशी इंद्रराज शासन करता था। इसके बाद 960 ईस्वी तक प्रतिहार वंश में 4 शासक हुए, देवपाल 948 ईस्वी से 949 ईस्वी, विनायकपाल द्वितीय 953 से 954 ईस्वी, महिपाल द्वितीय। देवपाल के समय में चंदेलों के ने कालंजर का दुर्ग प्रतिहारों से छीन लिया। खजुराहो लेख में चंदेल यशोवर्मन को गुर्जरों के लिए जलती हुई अग्नि के समान कहा गया है। इससे यह भी सूचित होता है कि अब चंदेल तथा दूसरे सामंत भी बड़ी तेजी से सुर उठाते सिर उठाते जा रहे थे, जिन्हें नियंत्रित करने में कोई भी प्रतिहार शासक समक्ष नहीं था। विजयपाल के समय तक आते आते प्रतिहार साम्राज्य कई भागों में बंट गया तथा प्रत्येक भाग में स्वतंत्र राजवंश शासन करने लगे। इनमें कन्नौज के गढ़वाल, जेजाज भुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल, ग्वालियर के कच्छ पघात, शाकंभरी के चाहमान, मालवा के परमार, दक्षिणी राजपुताना के गुहलोत, मध्य भारत के कलचूरी चेदी तथा गुजरात के चालुक्य प्रमुख हैं। दसवीं शती के मध्य में प्रतिहार साम्राज्य पूर्णतया छिन्न भिन्न हो गया। अब यह कन्नौज के पास आसपास ही सीमित रहा। राज्यपाल जो विजयपाल का पुत्र था ने 1018 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया। उसने महमूद गजनबी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया तथा कन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राज्यपाल अपना शरीर लेकर भाग खड़ा हुआ तथा महमूद ने कन्नौज को खूब लूटा। राज्यपाल की इस कार्यरता पर तत्कालीन भारतीय शासक अत्यंत कुपित हुए। चंदेल नरेश विद्याधर ने राजाओं का एक संघ तैयार कर उसे दंडित करने का निश्चय किया। धूपकुंड लेख से प्रतीत होता है कि विद्याधर के सामंत कछवाहा वंशी अर्जुन ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। राज्यपाल के दो उत्तराधिकारी त्रिलोचनपाल तथा यशपाल के नाम से मिलते हैं, जिनके शासनकाल के विषय में हमारा ज्ञान अत्यल्प है। लगभग 1090 ईस्वी तक वे किसी न किसी रूप में कन्नौज अथवा उसके किसी भाग पर शासन करते रहे। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पूर्ण रूपेण विलुप्त हो गया तथा कन्नौज में उसके स्थान पर गढ़वाल वंश की स्थापना हुई। उत्तर भारत के इतिहास में प्रतिहारों के शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रतिहारों ने प्रथम बार उत्तरी भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की तथा लगभग 150 वर्षों तक वे इस साम्राज्य की अधिष्ठाता बने रहे। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक देश की रक्षा की। मुसलमान लेखक भी उनकी शक्ति एवं समृद्धि की प्रशंसा करते हैं। वे मातृभूमि के सजग प्रहरी थे और इस रूप में उन्होंने अपना प्रतिहार नाम सार्थक कर दिया। ग्वालियर प्रशस्ति का यह विवरण मात्र अतिरंजना नहीं लगता है कि म्लेच्छ आक्रमणकारियों से देश की स्वाधीनता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए नागभट्ट प्रथम तथा द्वितीय एवं मिहिर भोज, नारायण, विष्णु, पुरुषोत्तम तथा आदि वाराह के अवतार स्वरूप थे। वस्तुतः यह प्रतिहारों के पराक्रम का ही फल था कि मुसलमानों को सिंध और मुल्तान में अपना राज्य 8वीं शती में स्थापित कर लेने के बाद भी लगभग 300 वर्षों तक विस्तार करने का अवसर नहीं मिला तथा वे नियंत्रण में ही बने रहे। अनेक विदेशी इतिहासकार इस पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि जो इस्लाम धर्म विश्व के अन्य भागों में इतनी तेजी से फैल गया, वही भारत भूमि की ओर आसानी से अग्रसर नहीं हो पाया। जितने समय तक प्रतिहारों ने अरबों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, उतने समय तक तो कुछ राजवंशों का अस्तित्व ही नहीं रहा। शांति काल में भी उनकी उपलब्धियां कम सराहनीय नहीं रही। उन्होंने कन्नौज को उसका प्राचीन वैभव न केवल वापस दिया अपितु उसमें इस सीमा तक अभिवृद्धि कर दी कि आचार विचार, सुसंस्कार एवं सभ्यता की दृष्टि से देश के अन्य भागों के लोगों यहाँ के निवासियों का अनुकरण करने लगे। शक्ति तथा सौंदर्य में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नगर नहीं रहा। कुछ विद्वान हर्ष के स्थान पर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम को ही हिंदू भारत का अंतिम महान शासक स्वीकार करते हैं। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक दशा, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि हर्ष की मृत्यु के उपरांत प्रतिहारों ने संपूर्ण उत्तर भारत में एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया, किंतु विजयपाल 960 ईस्वी के समय तक आते आते विशाल प्रतिहार साम्राज्य पूर्णतया छिन्न भिन्न हो गया तथा उत्तर भारत में पुनः राजनैतिक अराजकता एवं अव्यवस्थता उत्पन्न हो गई। प्रतिहार साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर जिन राजवंशों का उदय हुआ, उनका इतिहास अग्रलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाएगा।